आज की बात।
आज की बात में आप सबका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओ, आज की बात में हम भारत में निर्धनता और उसे दूर करने के दावों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में निर्धनता एक कड़वी सच्चाई है और उसे दूर करने में नाकामी उससे अधिक खेदजनक सच्चाई। आजकल निर्धनता दूर करने पर चर्चा हो रही है, विशेषकर इसलिए भी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिससे निर्धनता दूर होने की आशा पैदा हुई है। हालांकि भाजपा को इस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले राहुल गांधी का ऐलान सुने।
5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शॉक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा।
तो सबसे पहले राहुल गांधी के इस ऐलान पर भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिक्रिया सुने।
वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। जो इसमें छल खपट है, एक ब्लफ है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं।
विपक्ष के विरोध पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला यूं कहते हैं।
सबसे बड़े देश के अर्थशास्त्रियों ने और पार्टी ने बैठकर निर्णय किया है, मैं आपको याद दिलाऊं,
जब हमने गरीबी हटाओ कहा तब भी भाजपाइयों ने शक जताया। जब हम आरटीआई और एमजी नरेगा लाए तो उन्होंने कहा पैसा कहां से आएगा। जब हमने किसान की कर्ज माफी की 72,000 करोड़ की तो तब भी बोले पैसा कहां से आएगा। किसान की कर्ज माफी हुई 72,000 करोड़ की देश में। एमजी नरेगा का 40,000 करोड़ रुपया यानी 10 साल में 4,00,000 करोड़ रुपया हमने देकर दिखाया, जिसे अब मोदी जी ने बंद कर दिया। इसी प्रकार से एमजी नरेगा भी चालू रहेगा और देश के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपया सालाना की राशि हम देंगे ताकि उन्हें गरीबी से खींचकर सबसे बेहतरीन लोगों के जीवन की लाइन के अंदर हम खड़े कर सके।
भाजपा की नेता आरती मेहरा ने एक इंटरव्यू में कहा,
बिल्कुल पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। बहुत गैर जिम्मेदाना इनका पूरा ये, जो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए चुनाव आते आते जो वायदे ये कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 1.5 गुना ज्यादा तो हम वैसे ही दे रहे हैं। और आप याद करिए कि राहुल गांधी जी गरीबी को एक मानसिकता कहते थे, एक मनोदशा कहते थे। और 1971 से लेके इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाएं, गरीबी कहां हटी इस देश में, जिस तरह का हाल किया। और आज 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किए डीबीटी के माध्यम से।
इस मामले पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम में अपने विचार इस प्रकार से प्रकट किए।
देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं और बहुत पैसा ट्रांसफर किया है, लेकिन उसके बावजूद गरीबी बढ़ रही है। और जो दो शॉक आए अर्थव्यवस्था के लिए, नोटबंदी का और जीएसटी का, उससे गरीबी पे बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र धराशायी हो गया। और इसीलिए आप देखें, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, बाकी जो गरीब तबके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए इंटरिम बजट में सरकार ने इन सारे तबकों के लिए कुछ ना कुछ देने का ऐलान किया, जैसे किसानों को 75,000 करोड़ रुपए, असंगठित क्षेत्र को 6,000 करोड़ रुपए की पेंशन, मिडिल क्लास को टैक्स में रियायत वगैरह दी। तो एक इस समय क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि नोटबंदी और जो जीएसटी ने धराशायी कर दिया। अब सवाल उठता है कि एक और स्कीम अनाउंस की गई है। अब ये स्कीम जो अनाउंस की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि अभी जो गरीब है वो अभी भी गरीब ही रह रहा है, वो उसके ऊपर नहीं आ रहा है। तो अब ये सरकार ने जो अनाउंस किया था उसके ऊपर ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम इतना पैसा देंगे। अब यहां पे जो स्कीम है उसमें दो चीजें हैं, एक तो हम सारे परिवारों को कम से कम 75,000 रुपए तक ले आएंगे आमदनी की सालाना, अगर वो उससे नीचे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तो पहले तो पैसा कितना लगेगा उसमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी आमदनी कम है 75,000 रुपए से किस परिवार की, जो बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि आमदनी जो है उसका आंकलन नहीं होता है हमारे समाज में। तो ये दोनों चीजें हैं जिस पे मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो अगर एवरेज में 50,000 रुपए की आमदनी है साल की एक गरीब परिवार की, तो आप 25,000 उसके ऊपर देने वाले हैं, 22,000 उसके ऊपर देने वाले हैं। तो वो जो अमाउंट है वो करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए आता है। 1.2 लाख करोड़ का मतलब 0.6% GDP का, और बजट का समझिए कि कोई 4.5% के आसपास। अब इतना पैसा क्या हम निकाल सकते हैं, उसके दो जरिए हैं कि एक तो हमारा जो टैक्स कंसेशन है, जो एक्साइज ड्यूटी और बाकी जो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह जो अब तो हट गए हैं, एक्साइज ड्यूटी जीएसटी है, कस्टम्स ड्यूटी हुआ, जो बाकी इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स, वहां पे हम 5,00,000 करोड़ रुपए की रियायत देते हैं, वहां से कुछ कम किया जा सकता है। दूसरा ये है कि हमारा वेल्थ टैक्स खत्म हो गया है, जबकि असमानता इतनी बढ़ गई है कि 9 लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि जितनी 55 लोगों के पास है। तो अगर हम 0.5% वेल्थ टैक्स लगा दें अपने 5% जो अमीर लोग हैं, तो उससे पैसा 1,00,000 करोड़ रुपए करीब आ सकता है। तो पैसा तो निकल सकता है जिससे कि फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े। और दूसरी बात रही कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लोग हैं जो 75,000 रुपए से कम है, वो बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जो हमारा जैसे कि सर्वे हो चुके हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हैं, सेंसस हैं कि कौन से गरीब परिवार हैं, उनकी परिभाषा हमने 5 पैरामीटर्स पे की है, कौन कच्चे घर में रहता है, किसके पास पानी नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो आइडेंटिफिकेशन ज्यादा बेटर है बनिस्पत इसके कि हम कहें कि 75,000 रुपए तक लेके आए।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस संदर्भ में अपने एक भाषण में कुछ बातें कही।
मैं आपको कुछ 55 साल तक एक ही परिवार का शासन रहा, गांधी परिवार का शासन रहा। जवाहरलाल नेहरू कहते थे इस देश में से गरीबी हटाएंगे। हटी क्या? जरा जोर से बोलो, हटी क्या? बाद में इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, हटी क्या? बोलो भैया, हटी क्या? राजीव गांधी आए, कहा गरीबी हटाओ, हटी क्या? जोर से बोलो मुरादाबाद वालों। अभी राहुल बाबा कहते हैं मैं गरीबी हटाऊंगा, हटा सकते हैं क्या? हटा सकते हैं? मित्रों, गरीबी इन्होंने देखी है नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब से गरीब घर में चाय बेचने वाले लड़के को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंत्री बनाने का काम।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन खड़गे की भी बात सुने।
हमने जो बोला वो किया है, नरेगा इम्पॉसिबल बोलते थे, हमने किया या नहीं किया? फार्मर्स का कर्जा माफ करने का कहे थे हमने, हमने माफ करके दिखाया या नहीं दिखाया? कई चीज हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखो। और बीजेपी ने जो वायदा किया वो एक भी वायदा उन्होंने निभाया नहीं है, और उनको अपने आईने में अपना चेहरा देखने दो।
श्रोताओं, भारत की राजनीतिक पार्टियों के घमासान से अलग हमारी यही कामना है कि यह वादा पूरा हो, चाहे जो पार्टी इस वादे को जिस तरह से भी पूरा करे। भारत से निर्धनता हटे ताकि किसी किसान की आत्महत्या या भूख से किसी की मौत की खबरें हमारी आत्मा को न झकझोरें। खुशहाली हर इंसान और हर समाज का मूल अधिकार है।